रामचंद्राय ओम नमो भगवते रामचंद्राय ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधोर् जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा सीता और राम जब चित्रकूट पहुंचे सीताराम लक्ष्मण तो रामचंद्र जी चित्रकूट की सुंदरता का गुणगान कर रहे हैं। अभी भी हमने देखा चित्रकूट बहुत सुंदर है और कल्पना कीजिए त्रेता युग में उस समय चित्रकूट कितना सुंदर रहा होगा और दिखा दिखा कर प्रभु श्री राम चित्रकूट की सुंदरता का बखान कर रहे हैं सीता मैया के सामने और इसलिए भी कर रहे हैं कि मैया सीता को उन्होंने कहा था कि वन में क्योंकि जब वनवास उनको हुआ तो माता सीता वो साथ में आने का निर्णय जब की तो भगवान सीता मैया को डिस्करेज कर रहे थे आने से लिए और बता रहे थे कि कैसे वन बहुत भयावह होता है जंगली जानवर कोई ठिकाना नहीं कोई सुरक्षा नहीं। तो उस समय माता सीता वो भगवान से कहती हैं कि जब मेरी कुंडली निकाली गई थी उस मेरी कुंडली में बता दिया गया था कि विवाह के पश्चात मुझे वनवास होगा तो आप मुझे क्या बता रहे हो, मुझे पहले से ही पता था कि विवाह के पश्चात क्या मेरे लिए लिखा गया है। हमारे कल के प्रवचन के पश्चात लीला प्रेम प्रभु मुझे प्रश्न पूछ रहे थे कि जनक महाराज ने कभी खोज खबर नहीं ली अपने बेटी की कि भाई इतना सब कुछ हो गया, कई कई ने जो कुछ किया, कहां रामायण में वर्णन नहीं है कि महाराज जनक आकर वो पूछे या फिर शिकायत की कि ये सब क्या चल रहा है, मैं इसलिए मेरी बेटी भेजा था क्या। हाँ, तो उन्होंने पूछा है ये प्रश्न, तो मैंने कहा जनक महाराज ने इसलिए कभी कोई शिकायत नहीं की या कभी आकर ये प्रश्न नहीं पूछा क्योंकि दामाद अगर किसी के राम हैं, यदि किसी के दामाद रामचंद्र जी स्वयं हैं, तो उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं कि उनकी बेटी सुरक्षित है कि नहीं। और यदि दामाद प्रभु श्री राम की तरह नहीं है तो जो पिता है वो हर क्षण चिंता करता रहता है कि क्या होगा पता नहीं। तो सीता मैया ने जब ये भयावह वर्णन सुना प्रभु श्री राम के मुख से, तो चित्रकूट में आने के पश्चात मैया सीता पहले पूछ लेती, आप तो बहुत कुछ बोल रहे थे, डरा रहे थे मुझे कि वन में यह होता है वो होता है, इसलिए वो बोलने से पहले प्रभु श्री राम चित्रकूट में आने के पश्चात गुणगान करने लगे, देखो सब झरने देखो, पशु पक्षी देखो, इन पेड़ों को देखो, ये इतना प्राकृतिक सुंदरता है यहाँ की, उसको देखो। तो माता सीता देखते हुए प्रभु श्री राम की तरफ देख रही थी कि मैं जानती हूँ कि आते ही चित्रकूट की सुंदरता का बखान क्यों कर रहे हैं आप, वैसे है चित्रकूट बहुत सुंदर। तो पूरे 14 वर्ष के वनवास में, अब देखिए रामचंद्र जी जो इतने वर्ष अयोध्या में रहे बचपन से, दशरथ वो उनके पिताजी गुजर गए, रामचंद्र जी नहीं थे, माता कौशल्या को छोड़कर आए हैं, कैकेयी जो कि इतनी प्रिय उनकी थी माता, उनको पूरे अयोध्यावासी को छोड़कर आए, परंतु पूरे 14 वर्ष में प्रभु श्री राम ने, यदि हम आज की भाषा में कहें, किसी को यदि मिस किया तो वो भरत। और रह रहकर प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी और सीता इनके सामने भरत को याद किया करते थे, और फिर उन्होंने चित्रकूट की सुंदरता के विषय में जब भरत से भेंट हुई, उसके पश्चात जब वो यहां पर रहे, 11 साल रहे भगवान चित्रकूट में, तो उसके पश्चात चित्रकूट की असली सुंदरता उन्होंने बताई कि भरत के वजह से, क्योंकि भरत यहां पर आकर गए हैं। ये है चित्रकूट कि वास्तविक सुंदर था। तो हमने ये प्रसंग लिया जिसके अंदर हम अब तक कितने शिक्षाएं ले चुके हैं, 5 शिक्षाएं ले चुके हैं। भक्ति का प्रदर्शन, ये संसार चाहे आप कितना भी अच्छा कुछ करो, गलत फहमी आपके ऊपर, गलत आरोप लांछन तो लगाने ही वाले हैं। फिर भरद्वाज ऋषि ने साधु संघ का महत्व क्या है ये सिखाया हमें, और अयोध्या वासियों के लिए उन्होंने जो व्यवस्थाएं की, परंतु वो स्वयं भरद्वाज मुनि कभी उन सुविधाओं का भोग नहीं किए, तो ये हम सीखते हैं, रेनन्सिएशन अमिड्स ऑल फैसिलिटीज। और अयोध्या वासी वो 2-3 दिन सारे जो उनको कंफर्ट्स और कन्वीनियंसेस मिले हुए थे, तो वो भूल गए कि वो अयोध्या से क्यों निकले। और फिर भरत उनको याद दिलाना पड़ा, सारे अयोध्या वासियों को, कि भाई आप लोगों को यदि मेरे साथ आना है, जिस उद्देश्य से हम निकले हैं, आप आइए, नहीं तो मैं तो निकला यहां से। अब जैसे ही वो भरद्वाज ऋषि के आश्रम से आगे निकले, तो मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हुई। और वो मौसम के अनुसार नहीं थी, जैसे कि अभी हम सुन रहे हैं बंबई में, इवन नासिक में, कि बिना मौसम की वर्षा। तो वैसे बिना मौसम के मूसलाधार वर्षा हो रही थी। और कौन करा रहे थे ये वर्षा? देवराज इंद्र। तो देवराज इंद्र द्वारा ये मूसलाधार वर्षा क्यों? कोई अंदाजा लगा सकता है कि क्यों देवराज इंद्र? अब उनको उनको भरत से क्या दुश्मनी हो गई? हाँ, यदि भरत ने कन्विंस कर दिया रामचंद्र जी को, और उनको भरत की राम भक्ति पर ज्यादा विश्वास था, ये कर देंगे कन्विंस, इनके अंदर वो शक्ति है। यदि कन्विंस कर दिया रामचंद्र जी को, रामचंद्र जी फिर से अयोध्या लौट गए, तो ये सारे असुर रावण इत्यादि उनको कौन मारेगा? और फिर हमारी पार्टियां कैसी चलेगी देव में, देवलोक में? वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसलिए किसी ना किसी प्रकार से भरत को रोको, चित्रकूट पहुंचने से पहले भरत को रोको, मूसलाधार वर्षा करवा दी। तब बृहस्पति उनके गुरु वो पहुंचे और वो कहे कि तुम बाज नहीं आओगे? हाँ, अरे मुझे विश्वास है रामचंद्र जी के ऊपर, उन्होंने हम सबको वचन दिया है, अवतार लेने से पहले उन्होंने वचन दिया है, और वो एक ऐसे कुल में अवतरित हुए हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो ये उनका अवतार है, तो बंद करो ये सारी वर्षा। तब फिर देवराज इंद्र वर्षा रोक देते हैं। तो यहां पर हम क्या सीख रहे हैं कि हम जब हमारे साधना भक्ति के पथ पर होते हैं, तो कई बार जो कर्मणा दैव नेत्रेण, दैव जो हैं, दैव अर्थात यहां पर जैसे देवराज इंद्र, वैसे हमारे दैव जो हमारे कर्म हैं, क्योंकि वो जो ऊपर सारे देवता हैं वो हमारे कर्मों के अनुसार हमारा दैव लिखते हैं, वो हैं दैव, और हमारा जो दैव है वो दैव लिखते हैं हमारे पिछले पाप और पुण्य कर्मों के अनुसार। तो कई बार जब भक्ति में अवरोध आते हैं, या कई बार आप देखो कि भक्ति में कई चीजें बहुत आसानी से आप कर पाते हो, हमने ये भी अनुभव किया होगा कि जैसे छोटी छोटी चीजें कि नाम जप करना, अभी हमने कभी प्रैक्टिस नहीं की, 16 माला बीड बैंक पर, बीड्स के ऊपर माला करना, लेकिन हम में से कई इतना मुश्किल नहीं हुआ होगा हमें कि कोई ऐसा पहाड़ चढ़ना है और कई साल लग गए उसे शुरू करने में और उसे बरकरार रखने के लिए, या फिर जैसे हमने हमारे घर को रिस्ट्रक्चर किया होगा भक्त बनने के बाद, ऑल्टर बीच में लिविंग रूम में आ गया, टीवी कहाँ और चला गया, और फिर चार नियमों का पालन, ये धोती कुर्ता तिलक इत्यादि ये सब कुछ पहनना। तो कई बार होता है कि हमने हमारे पिछले जन्मों में कुछ ऐसी सुकृतियां, ऐसे पुण्य किए होंगे जिसके वजह से भक्ति के अंग, बाह्य अंग, वो सुखपूर्वक हम कर पाए, इतनी कठिनाई नहीं हुई। और कई बार जब ये बाह्य अंग करने में बहुत कठिनाई होती है, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि हमारे पिछले इतने पाप कर्म हुए होंगे जिसके वजह से सरल विधि है भक्ति की, वो भी हमें सबसे कठिन लगने लगती है। जैसे कई मैंने देखे हैं चाय नहीं छोड़ पाते। हाँ, मैं बहुत अच्छी से जानता हूं कि उनके लिए आप, उनके लिए मतलब सत्युग की जो तपस्या वो एक पलड़े पर रख दो। और कैसी तपस्या कि गर्मी के मौसम में अग्नि जलाकर ऐसे ऐसे बड़े बड़े तपस्वी वो अपना तप जप इत्यादि किया करते थे। सर्दी के मौसम में जाड़े में माइनस में जब जा रहा है टेम्परेचर और वो बर्फीले पानी में जाकर अपना ध्यान करते हैं, ऐसी सत्यों की तपस्या। और वो 60,000 साल एक वो पलड़े में रख दो आप, और कलयुग में चाय। तो जो त्याग की जो इंटेंसिटी है वो सेम है वो, या उसको त्यागने का जो दुख है वो उतना ही कलयुग में देखा जाता है। तो आज हम रामायण के एक बहुत ही जो हमें ये एक पात्र प्रिय हैं उनके अतीत के विषय में चर्चा करते हैं, और ये है शबरी। तो शबरी के विषय में हमने सुना कि शबरी ने जूठे बेर भगवान को खिलाए। अच्छा, इस चीज को हम डिस्प्रूव करने वाले हैं आज। शबरी ने कौन से बेर नहीं खिलाए, जूठे बेर। आप तैयार रहिए। लेकिन उससे पहले शबरी का पिछला जन्म हम उसमें जाते हैं कि कैसे शबरी इस स्तर तक पहुंची कि शबरी को ढूंढते हुए राम आए। एक साधक ढूंढते हुए रामचंद्र जी के पास पहुंचता है, शबरी की ऐसी भक्ति कि रामचंद्र जी ढूंढते हुए शबरी के पास आए। तो क्या ऐसे शबरी ने किया कि राम दौड़ते हुए शबरी के पास आए। तो शबरी पिछले जन्म में वो एक राजकुमारी थी और अति सुंदर, सुंदरता की वजह से वो इतनी विख्यात थी। और ऐसी राजकुमारी और ऐसी सुंदर होने के वजह से वो जहां कहीं पर भी जाती तो फैन फॉलोइंग बोलते हैं ना जिसको, तो जैसे कोई अभिनेत्री या कोई सिनेमा स्टार आजकल कहीं पर भी वो जाए तो उनके पीछे पीछे सारे वो फोटोग्राफर्स और मीडिया वाले और ऑटोग्राफ लेने वाले सब पीछे पीछे। मुझे याद है जब बहुत साल पहले मैं अपने कृष्ण बलराम मंदिर में कुछ समय था, वृंदावन का इस्कॉन मंदिर, तो वहां पर मैं वो जो अपने मंदिर के प्रांगण में जो परिक्रमा करते हैं सब लोग, तो वहां पर वो एक ऐसे उन्होंने बनाया हुआ है झाड़ियां जैसी और नीचे बेंच है, तो मैं वहां बैठ के जप कर रहा था। तो हमारे बॉलीवुड की हेमा मालिनी जी वो चलते हुए आए और उनके पीछे इतना बड़ा क्राउड कोई ऑटोग्राफ लेने के लिए, ये लेने के लिए। तो मैं अपना धोती कुर्ते में बैठा हुआ था, दूर से चेहरा समझ में आ गया। धन्नों को चला रही थी उस समय। तो भी हाथ में तो माला थी, हरे कृष्णा चल रहा था, सामने से हेमा मालिनी जी आ रही हैं, उनके पीछे पूरा उनका फैन फॉलोइंग। तो जैसे ही वो अब यहां पर थोड़ा आमना सामना मेरे से हुआ उनका, तो जो ऑटोग्राफ लेने के लिए कोई बंदा आगे आगे हो रहा था, पेन और पेपर आगे कर रहा था, तो वो थोड़ी चिढ़ गई और वो झटका दी हाथ से उसको, बोले अरे मंदिर में तो छोड़ो तुम लोग। क्या कहा उसने, अरे मंदिर में तो छोड़ो तुम लोग हमें, ये भगवान का मंदिर है, भगवान के पास फोकस करो। और फिर उसी समय वो चलते चलते मेरी तरफ देखी और मेरी तरफ देख के बोली उनका ऑटोग्राफ लो जाके। मैं जब कर रहा था और उस समय तो मैं वो वाइट में था, मैं खाली छुट्टी पे आया था, तो धोती कुर्ते में था, वाइट में था, तो सारे लोग, जब उसने इशारा मेरी तरफ किया तो वो सारे लोग मेरी तरफ देख रहे, ये कौन है, इसका ऑटोग्राफ कौन लेगा। तो शबरी वो इस प्रकार की राजकुमारी थी कि वो जहां कहीं पर भी जाती, पीछे 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 सब लोग उसकी सुंदरता देखने के लिए, वो एक सेलिब्रिटी थी। परंतु उसे वो पसंद नहीं था, क्योंकि वो सत्संग करना चाहती थी। ऐसे संस्कार मिले हुए थे कि शबरी हर समय सत्संग करना चाहती थी, और सत्संग करने के लिए जहां कहीं पर भी वो निकलती, ये सारे ऐसे लोग जो कि भौतिकतावादी टाइप्स उसके पीछे पीछे हो लेते, तो परेशान हो गई थी शबरी इससे। तो एक दिन उसने सोचा, मैं अपना सारा राजमहल वगैरह सब त्याग कर मैं प्रयाग जाऊंगी, हम लोग सब प्रयाग से आए, तो प्रयाग जाऊंगी। तो प्रयाग गई कि वहां पर सुना है कि बहुत साधु संघ और ये मेले वगैरह कुंभ के लगते हैं, तो प्रयाग गई। तो वहां गई तो वहां पर इतने सारे साधुओं को देखा, वहां पर भी खबर फैल गई कि ये राजकुमारी प्रयाग की ओर निकली है। तो वहां पर पहुंच गए, साधु के संग करने से पहले तो सारे साधु वो डर गए, वो लोग सब भागते निकले वहां से। तो ये इतनी परेशान हुई, इसने फिर वहां प्रयाग में प्रार्थना की भगवान से कि यदि आप मुझ पर कृपा करना चाहते हो, कोई भी अगर मेरे में गुण हैं, आपकी मैं भक्ति करना चाहती हूं, कृपा कर अगले जन्म में मुझे बदसूरत बनाना। क्या प्रार्थना की शबरी ने, कृपा कर अगले जन्म में मुझे बदसूरत बनाना, और मुझे ये जो वर्णाश्रम में जातियां हैं उसमें भी मुझे कोई जाति में मत रखना, उससे भी निचली जाति में जो अछूत होते हैं ऐसी जाति में मुझे पैदा करना। ये प्रार्थना वो दिन रात किया करती थी भगवान से शबरी। और फिर लौटना पड़ा, क्योंकि राजकुमारी थी। तो हुआ क्या कि जब वो लौटी तो उनकी जो शादी तय हुई, जब उनकी शादी तय हुई तो उन्होंने देखा कि शादी, हाँ नहीं नहीं उनकी शादी अगले जन्म में, अगले जन्म में ही उसकी कथा है कि उनका जन्म बदल गया, अब वो भिलनी के रूप में, और उनकी शादी तय हुई उस समुदाय में, भिलनी समुदाय के अंदर उनकी शादी तय हुई। तो शादी के एक दिन पहले कई ऐसे मासूम जानवर वो बांधे हुए थे बलि चढ़ाने के लिए। तो शबरी ने जब अपनी माँ से पूछा कि ये सब जानवरों को क्यों ऐसे बांध रखा है, उन्होंने कहा, अरे भाई तुम्हारी शादी है कल और उसके लिए ये सब बलि चढ़ने वाले हैं। तो जब शबरी को ये कि मेरी शादी के लिए सारे जानवर बलि चढ़ने वाले हैं, तो उसने सारे जानवरों को रात को छोड़ दिया, और वो सारे जानवर शबरी के पास आए और शबरी को आशीर्वाद देने लगे कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। और उनकी क्या मनोकामना थी कि उनको सत्संग चाहिए था। तो शबरी फिर उस रात निकल गई, वो पूरे उनके जो भिल समुदाय से निकल गई, भाग गई, और भागकर वो जंगल में पहुंची जहां पर शबरी ने देखा साधुओं का आश्रम है। तो पेड़ के पीछे छिपकर वो देखना चाहती थी कि ये साधु कैसे रहते हैं, ये क्या करते हैं, क्या इनकी साधना होती है। तो वो पेड़ के पीछे दूर से छिपकर इन साधुओं को देखती थी, इनकी दिनचर्या रोज की। तो शबरी ने देखा कि सुबह 3:30 बजे उठ जाते हैं, और फिर 3:30 बजे उठकर ये पूरे आश्रम, वो पूरा जो प्रांगण है उस पर झाड़ू लगाते हैं, साफ करते हैं, पूरा सफाई करते हैं, और उसके बाद फिर स्नान करने जाते हैं, और फिर आकर ब्रह्म मुहूर्त में वो अपनी साधना प्रारंभ करते। तो ये रोज देखती थी और ये आश्रम था मातंग ऋषि का आश्रम, और ये सारे जो साधु ये मातंग ऋषि के शिष्य। तो शबरी ने सोचा कि क्यों ना मैं इनकी सेवा प्रारंभ करूं, परंतु मैं तो स्त्री हूं और ये सब साधु विरक्त बैरागी लोग हैं, तो ये तो मुझे कभी आने नहीं देंगे इनके आश्रम में। तो शबरी क्या किया करती थी, ये लोग 3:30 बजे उठकर जो झाड़ू लगर लगाते हैं प्रांगण में, तो मैं 2:30 बजे उठकर पहले ये झाड़ू लगा दूंगी इनके लिए। तो 2:30 बजे सभी सोए हुए आश्रम में, सारे साधु बैरागी अपने मातंग ऋषि, और वो सब सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि किसने साफ किया, एक दूसरे से पूछा। वो हम तो सब सोए हुए थे, हमने तो नहीं किया। इतना ही नहीं, फिर वो कहे कि साफ तो हो गया, चलो फिर सीधा स्नान करने चलते हैं। तो स्नान करने जब वो गए, जब लौटे तो आश्रम के अंदर सब कुछ साफ, पहले आश्रम के बाहर सब कुछ साफ, अब उनकी जो कुटिया जहां पर वो रहते थे अंदर सब कुछ वो साफ करके आ गई। अब रोज ये चल रहा था, तो रोज ये चल रहा था तो उनको सबको भाई इतना अच्छा हेल्प मिल गया है तो कौन नहीं चाहेगा कि कोई ऐसी नौकरानी आए, कोई वेतन भी नहीं ले, अपने से आए, बिना बताए आए, काम कर कर चली भी जाए, पता भी न चले, सब काम भी हो जाए आपका, कौन नहीं चाहेगा। तो वो बोले कि ये तो भाई अच्छे व्यवस्था हो गई, पता नहीं कौन भला मानुष ये सब कर रहा है, जो भी कर रहा है हमारी सारी उसको कृपा प्राप्त हो, हमारे आशीर्वाद प्रार्थनाएं जो भी वो कर रहा है, तो बताया नहीं उन्होंने। फिर एक दिन मातंग ऋषि प्रवचन दे रहे हैं, उनके जो प्रशिक्षण उनको देते थे साधुओं को, तो मातंग ऋषि जो कि मेन उनके हेड, तो उन्होंने प्रवचन में कहा आप जब किसी की सेवा लेते हो तो दो चीजें होती है, दो चीजें आपसे चली जाती हैं और एक चीज आप प्राप्त करते हो, तो तीन चीजें होती है। ये लोग सब बैठ के सुन रहे हैं, तो मातंग ऋषि कहे आप जिस सेवा किसी से लेते हो तो आपकी जो भक्ति है और आपकी जो पुण्य सुकृति है उसका श्रेय उस व्यक्ति को जाता है जो आपकी सेवा कर रहा है। इधर एक दूसरे को देख रहे हैं अभी, अच्छा ऐसा है। और तो ये दो चीजें तो आपसे चली जाती है, और आपको मिलती क्या है कि वो जो सेवा की जो सहूलियत है, वो कन्वीनियंस है, उससे आसक्ति वो आप प्राप्त करते हो, वो एक चीज, और ये दो चीज आप गंवाते हो। तो जैसे ही इन्होंने ये सुना, तुरंत क्लास के बाद ये आए, बोले गुरु महाराज कुछ तो हो रहा है, यहां पर रोज सुबह कोई तो हमारा पूरा आश्रम का प्रांगण साफ कर रहा है, हमारी सेवा कर रहा है, पता नहीं कौन है, हमें अभी तो आपका ये प्रवचन सुनने के बाद पता लगाना ही है कि किससे हम सेवा ले रहे हैं अनजाने में। तो फिर मातंग ऋषि को जब पता चला तो ठीक है पता लगाया जाए, तो रात को सोए नहीं, उस रात कोई सोया नहीं कि अब सारे CCTV ऑन कर कर हम चेक करेंगे कि कौन कर रहा है। और जब रंगे हाथ पकड़ा शबरी को, तो मातंग ऋषि के सामने लाकर खड़ा, ये एक स्त्री और वो भी भिल जाति की ये सब कुछ कर रही है। तो मातंग ऋषि जब उन्होंने शबरी को देखा, तो मातंग ऋषि शबरी को देखकर पहचान गए कि ये प्रामाणिक है, ये कोई दिखावा नहीं कर रही, अगर ये दिखावा कर रही होती तो ये सामने करती। तो जब मातंग ऋषि ने शबरी की सादगी, सरलता और प्रामाणिकता को देखा तो मातंग ऋषि ने शबरी को कहा, ठीक है तुम यहां हमारी सेवा में तुम रह सकती हो। सारे साधु वगैरह, ऐसा कभी मातंग ऋषि ने अभी ऐसा किया नहीं, ये तो रेवोल्यूशनरी है ये वो। और फिर वो दिन रात इन सभी साधुओं की सेवा उसने की, मातंग ऋषि की सेवा की, मातंग ऋषि को अपना गुरु माना। और जब मातंग ऋषि भगवत धाम जाने के लिए, अब उनकी उम्र हो गई थी, भगवत धाम जाने के लिए वो तैयार हुए, अपनी तैयारी पूरी की, तो उन्होंने शबरी से कहा कि शबरी तुमने जो भक्ति, तुमने जो साधु सेवा की है इतने वर्षों तक, उसका फल ये होगा कि साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान खोजते हुए आएंगे तुम्हें। ये भविष्यवाणी मातंग ऋषि ने केवल शबरी के लिए की, और इसलिए फिर शबरी मातंग ऋषि के जाने के पश्चात कई वर्षों तक प्रतीक्षा करती, हर रोज वो प्रतीक्षा करती, प्रभु श्री राम कब आएंगे, और प्रभु श्री राम का नाम, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि राम अवतार आएंगे, तो राम का नाम हर समय शबरी उच्चारण किया करती थी, क्या नॉन स्टॉप राम का नाम उच्चारण किया करती थी शबरी। तो जब रामचंद्र जी आए और शबरी ने रामचंद्र जी को जो बेर खिलाए, हम आएंगे उस प्रश्न के ऊपर कि क्या वो बेर झूठे थे, ये बात झूठी है, हमारे वैष्णव टीकाकार इसको सिद्ध किए। अब आपको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड आगे कर अयोध्या ले चलते हैं। फिर राम का राज्याभिषेक हुआ, और राज्याभिषेक के पश्चात एक दिन रामचंद्र जी लक्ष्मण को देखे, थोड़े से मायूस अकेले अकेले बैठे हुए थे सरयू के तट पर। तो रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के पास जाते हैं और पूछते हैं, क्या बात, क्या है, तुम इतने मायूस क्यों बैठे हो, झगड़ा हुआ उर्मिला से? तो लक्ष्मण वो कहते हैं कि हम 14 वर्ष एक साथ रहे वन में, इतना सब कुछ हुआ, बचपन से हम एक साथ पले बड़े, एक ही दिन हम पैदा हुए, एक ही पालने में हम सोते थे, सब कुछ हमने एक साथ किया, सारे अस्त्र शस्त्र उनका प्रशिक्षण एक साथ हमने प्राप्त किया, वन में एक साथ गए, और मेघनाथ ने जब बाण मारा आपको भी मारा था, तो ऐसा कैसे कि सब कुछ हमने एक साथ किया परंतु मैं मूर्छित घायल बेहोश गिर गया, आप नहीं गिरे, ऐसा कैसे हुआ? यह बात मुझे तब से खटक रही है। जब यह हुआ था उस समय तो हम बहुत बिजी थे, अभी हम फ्री हैं, तो ये मेरा प्रश्न। तो रामचंद्र जी ने लक्ष्मण की ओर देखा, मुस्कुराए और वो कहे कि मैं प्रतीक्षा में था कि कब तुम मुझे ये प्रश्न पूछोगे, इतने वर्षों बाद तुमने ये प्रश्न मुझसे पूछा है, तो हां आज तुम जानो कि मेघनाथ ने, इंद्रजीत ने जब वो बाण छोड़े थे, मुझ पर भी छोड़े थे, तुम पर भी छोड़े थे, परंतु तुम घायल मूर्छित बेहोश गिर पड़े, मैं नहीं गिरा। क्यों? क्योंकि जब शबरी ने बेर खिलाए थे तो लक्ष्मण ने नहीं खाए थे, लक्ष्मण ने वो बेर फेंक दिए कि मैं एक भिलनी के जूठे बेर मैं खाऊं, नहीं वो पचा पाएंगे शायद, परंतु लक्ष्मण ने उसे साइड में फेंक दिया। तो रामचंद्र जी तो जानते हो तंत्रयामी है, तो रामचंद्र जी पूछे कि याद है शबरी जब वो बेर खिला रही थी तो तुम उसे सब फेंक रहे, तुमने एक भी बेर खाया नहीं। हाँ मैं कैसे खा रहा, वो बात पची नहीं मुझे, पता नहीं आप कैसे खा रहे थे। बाद में लक्ष्मण ने रोका कि बस हो गया, अभी कितना खिलाओगे, ऐसे थोड़ी खिलाया जाता है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अपने मुंह का जूठा खिला रही हुई। तो प्रभु श्री राम ने बोला कि वो जो शबरी के द्वारा दिए गए जो बेर थे वो जड़ी बूटी का काम कर रहे थे मेरे ऊपर, उनके अंदर शबरी के शुद्ध भक्ति की जो जड़ी बूटी और औषधि थी उसके वजह से मुझे कुछ नहीं हुआ। इतना ही नहीं लक्ष्मण, तुमने वो जो शबरी के द्वारा चखे गए बेर तुमने जो फेंक दिए थे उनको पक्षियों ने खाया और वो पक्षी उड़ते उड़ते हिमालय गए, और हिमालय में जब वो वहां पर गए तो उसके कुछ कण उनके चोंच से नीचे जब गिरे तो वहां से संजीवनी ये जड़ी बूटी उत्पन्न हुई, और वो संजीवनी जो हनुमान जी लेकर आए और उसी संजीवनी से तो तुम्हारे लिए भी लिखा गया था कि शबरी के वजह से ही तुम पुनर्जीवित होगे। तो लक्ष्मण ने जब ये सुना तो लक्ष्मण के आंखों से आंसू आ गए। तो शबरी से संबंधित एक और प्रसंग है कि जब भगवान शबरी के जूठे बेर खा रहे थे तो वहां के जो और ऋषिगण जो इतना सब कुछ सुने हुए थे कि ये दशरथ नंदन, ये कौशल इंद्र, ये राम कौशल्यानंदन, ये सब वन में आए हुए हैं, तो इतनी उत्सुकता से वो राम का दर्शन करना चाहते थे और जानना चाहते थे, उनसे भेंट करना चाहते थे, परंतु यहां पर वो देख रहे हैं कि ये जो ये दासी है एक भिलनी इसके जूठे बेर खा रहे हैं। तो उन्हें डाउट आया कि ये डुप्लीकेट लगते हैं, ये भगवान नहीं हो सकते, उनको डाउट आया। तो उनको जब डाउट आया तो आए पूछने के लिए, हमें डाउट है आप भगवान हो कि नहीं। तो रामचंद्र जी वो तो इतने विनम्र, तो रामचंद्र जी ने कहा अरे मैं काय का भगवान, मैं तो बस एक साधारण सा क्षत्रिय हूं जो अपने पिता की सेवा करने के लिए निकला हुआ हूं, उनके वचनों को पूरा करने निकला हूं, मैं कोई भगवान भगवान नहीं। साधु सारे बोले हाँ वही तो हम बोल रहे हैं, हो ही नहीं सकते तुम भगवान। लक्ष्मण वहां पर सुन रहे हमारी जरूरत ऐसे बोलते हो तुम लोग। तो फिर लक्ष्मण ने जब वो सफाई पेश की रामचंद्र जी की ओर से तो ये सारे साधु ऋषिगण बोले ठीक है, यहां पर एक कुंड है जो कि कितने सालों से ये मैला है, बदबूदार ये कुंड है, इसका पानी कोई शुद्ध नहीं कर पाया है, तो अगर ये भगवान है तो इनके चरण इस कुंड में डालो, देखते हैं ये कुंड का पानी साफ होता है कि नहीं होता है, ये टेस्ट है। काय का टेस्ट? अवतार का टेस्ट कि ये बोनाफाइड अवतार हैं कि नहीं। तो लक्ष्मण बोले तो जरूर होगा, रामचंद्र जी को बोले चलो भाई करके दिखा दो। रामचंद्र जी ने अपने चरण उस कुंड में डाले, वो मैला पानी मैला का मैला रहा, कुछ नहीं हुआ। सारे वो ऋषिगण बोले देखा देखा यही तो हम बोल रहे थे, ये डुप्लीकेट है। लक्ष्मण जी वो आश्चर्यचकित हो गए, ऐसा कैसा हुआ। तो रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं कि आप ये कौन सी लीला कर रहे हो। तो लक्ष्मण ने कहा ठीक है वो ये सब छोटी मोटी चीजें नहीं करते, मैं करके दिखाता हूं। तो लक्ष्मण अपने चरण डालते हैं उस कुंड के अंदर, क्या होता है ऐसे का ऐसा वो कुंड मैला ही रहता है। तो ये सारे ऋषिगण बोलते हैं आप दोनों क्या खिचड़ी पका रहे हो यहां पर, आप लोग क्या सोच रहे हो, हम लोग इतने बेवकूफ है? हम लोग बहुत बड़े तपस्वी हैं, सब पहचानते हैं। तो लक्ष्मण और चकित हुए कि ये कैसा कुंड है भाई, क्या मैल है इस कुंड के अंदर कि साफ ही नहीं हो रहा है। तो फिर लक्ष्मण ने कहा ठीक है, आप लोग इतनी तपस्या किए हो इतने वर्षों से, आप अपने चरण डालो, देखते हैं आपकी तपस्या से ये शुद्ध होता है कि नहीं। तो उन्होंने अपने जब चरण डाले तो वो पानी और मैला हो गया। पहले जितना मैला था उससे कई गुना ज्यादा और मैला हो गया। तो अब यहां पर ये बात और ज्यादा रोमांचक होती जा रही कि चल क्या रहा है। फिर प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से कहा और इन ऋषि मुनियों से कहा कि यदि शबरी होती, क्योंकि शबरी चली गई थी तब तक, शबरी ने भगवान को बेर खिलाए और उसी दिन शबरी ने अपने आप को आग में, अग्नि जलाकर अपने आप को आग में अर्पित कर दिया, क्योंकि मातंग ऋषि ने कहा था, वो मातंग ऋषि के साथ जाना चाहती थी। मातंग ऋषि बोले नहीं, रामचंद्र जी आएंगे और उनकी सेवा तुम्हें करनी है, उसके बाद तुम भगवत धाम आओगे। तो वो उसी दिन की प्रतीक्षा में थी। रामचंद्र जी को ऑफरिंग वगैरह सब कर दिया, वो संतुष्ट हुए, मैं निकली यहां से। तो शबरी निकल चुकी थी। तो रामचंद्र जी बोले कि यदि शबरी यहां पर होती तो इस कुंड को शबरी शुद्ध कर सकती थी। तो सारे ऋषि मुनि बोले वो अब बोलने में क्या, वो तो अभी बोल दोगे क्योंकि शबरी है नहीं है यहां पर। रामचंद्र जी बोले अभी भी शबरी के वजह से ये कुंड शुद्ध हो सकता है। कैसे? रामचंद्र जी लक्ष्मण को बोलते हैं कि शबरी जिस कुटिया में रहती थी, जाओ उस कुटिया में और जहां जहां शबरी के चरण चिन्ह दिख रहे हैं वो धूली लेकर आओ। और लक्ष्मण जाते हैं, वो धूली इकट्ठा कर लाते हैं, ये सारे ऋषि मुनि देख रहे हैं। जब वो धूली इस कुंड में डाली जाती है तो वो कुंड गंगा की तरह शुद्ध हो जाता है। और तब जाकर ये सारे ऋषि मुनि वो पहचान जाते हैं कि भगवान अपने भक्तों का गुणगान करने के लिए स्वयं वो जो उनका इमेज है उसको दांव पे लगा देते हैं अपने। और कई लोग ये आरोप लगाते हैं ना कि ये आपके वैदिक संस्कृति के अंदर इतना जातिवाद है, जातिवाद के ऊपर जो आरोप लगाते हैं। तो ये शबरी की कथा सुनाइए कि शबरी एक तो स्त्री और वो भी एक भिलनी, और प्रभु श्री राम ने शबरी को क्या दर्जा दिया, ये हम सुना सकते हैं। तो अब आप आते हैं उस प्रश्न पर कि क्या शबरी ने प्रभु श्री राम को जूठे बेर खिलाए या नहीं। बहुत सुंदर उत्प्रेक्षा है हमारे वैष्णव आचार्यों की कि शबरी निरंतर राम का नाम लिया करती थी अपने जिह्वा से, और जो भक्त निस्वार्थ भाव से शुद्ध प्रभु श्री राम का नाम अपनी जिह्वा पर लेता है तो राम उसकी जिह्वा पर विराजित होते हैं। तो बेर खाते समय भी वो राम का नाम लेना रोक नहीं पा रही थी, तो राम बगल में भी थे और जिह्वा पर भी थे। तो जैसे ही वो बेर अपने मुख में लेती तो कौन खा रहे थे? श्री राम डायरेक्टली खा रहे थे। तो इस उत्प्रेक्षा से सिद्ध होता है कि शबरी ने जो बेर खिलाए वो टेक्निकली जूठे नहीं थे, वो प्रभु श्री राम अपने नाम के रूप में डायरेक्टली शबरी के मुख से खा रहे थे। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। गाओ। अच्युतम केशवम राम नारायणम अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम जानकी वल्लभम कौन कहता है भगवान खाते नहीं कौन कहता है भगवान खाते नहीं बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं तो क्योंकि शबरी अभी कोई उनका नाम भी नहीं जानता था क्योंकि शबर जाति की वो थी इसलिए शबरी बुलाते थे तो जो उन्होंने अपने पिछले जन्म में एज अ राजकुमारी ऐसी तीव्रता भगवान के भक्ति की दिखाई तो उनके उस सुकृति के वजह से तो यहां पर हम कौन से मुद्दे पर हैं कि हमारे भक्ति में हमारे पिछले पाप और पुण्य अलग अलग प्रकार से या तो वो बाधक बनेंगे या सहायक बनेंगे जैसे एक रामायण में ये कथा है कि अयोध्या में उनका राज्याभिषेक होने के पश्चात एक कुत्ता शिकायत लेकर लक्ष्मण और रामचंद्र जी के सभा में आता है क्या शिकायत कि आपके राज्य में एक व्यक्ति है जो मुझे परेशान करता है पत्थर मारता है मुझे दुत्कार के व्यवहार करता है मेरे साथ ये कैसा राम राज्य है कौन है बुलाया गया तो जब ये सिद्ध किया गया कि हां ये इस कुत्ते को इसने परेशान किया है तो रामचंद्र जी अपनी अदालत में अब उन्होंने अपना निर्णय दिया उस कुत्ते से पूछा ठीक है तुम बताओ क्या दंड मिलना चाहिए इसे तो कुत्ता कहता है इसे मठाधीश बना दो किसी मठका तो रामचंद्र जी आश्चर्यचकित हो गए अचरज करने लगे कि ये कोई दंड है तो कुत्ता कहता है हां इसे मठाधीश बनाओ किसी मठ का तो वो पूछे कि तो इसमें दंड क्या है ये तो इनाम हो गया ना किसी मठ का मठाधीश नहीं ये दंड है कैसे पिछले जन्म में मैं भी मठाधीश था और जो मैंने इतनी परेशानी दी तो लोगों के ऐसे ऐसे बद्दुआएं श्राप वगैरह मिलके ये मेरा हाल है इसलिए मैं भी चाहता हूं कि ये भी उसी दौर से गुजरे इसे मठाधीश बनाओ ताकि अगले जन्म में मेरी तरह ये भी कुत्ता बने ये कथा है रामायण में तो ये जो हमें लगता होगा कि भक्ति में आने के पश्चात प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं जब ये प्रश्न प्रभुपाद को पूछा गया कि जब हम भक्ति में आ जाते हैं तो क्या हमारा पिछला पाप पुण्य वो कोई मायना रखता है क्योंकि हम लोग डायरेक्टली क्या 18.66 कोट करते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज सीधे 18वें अध्याय में जाते हैं अरे उससे पहले भगवान ने जो पिछले 17 अध्याय बोले हैं उनका पालन किया है कि नहीं किया है हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 1866 अभी होना चाहिए लेकिन देहिनोस्मिन यथा देहि नहीं शुरू किया है अभी तक तो जब ये प्रश्न प्रभुपाद को पूछा गया तो प्रभुपाद ने एक उदाहरण दिया कि जैसे जब पंखा चालू है उसको आप स्विच ऑफ कर दो तो तुरंत पंखा बंद नहीं होगा घूमना, अभी पावर सप्लाई बंद हो गया है, लेकिन कुछ समय के लिए वो पंखा घूमता रहेगा घूमता रहेगा। तो प्रभुपाद ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि हम लोग भक्ति में इस्कॉन में आ गए, स्विच ऑफ कर दिया है कौन सा पंखा, सारे ये बुरी आदतें, अलग अलग प्रकार के अनशन कर्म, उनके उसका स्विच ऑफ कर दिया है, लेकिन घूम रहा है घूम रहा है। और कई बार क्या होता है, अगर आपका पंखा नंबर 1 पे था पहले, ये थोड़ा मैं एक्सटेंड कर रहा हूं इस एग्जाम्पल, प्रभुपाद ने इधर तक एग्जाम्पल दिया, अब हम थोड़ा 2017 में उसको एक्सटेंड कर रहे हैं। तो अगर किसी का पंखा नंबर 1 पे चल रहा था, हल्लू हल्लू धीरे धीरे, तो उसको जब स्विच ऑफ करते हैं तो जल्दी बंद हो जाएगा ना उसका घूमना। किसी का पंखा नंबर 5 पे चल रहा था, तो होता है ना, कई डिवोटीज होते हैं तो उनका पिछले जन्म का पंखा 1 नंबर पे चल रहा था, इसलिए जब भक्ति में आते हैं तो जल्दी बंद हो जाता है वो। और कई होते हैं उनका 5 टॉप गियर पे पंखा चल रहा था, और उसको बंद होने में बहुत टाइम लग रहा है बहुत टाइम लग रहा है। और इतना ही नहीं, कई बार तो बंद हो जाता है, हम छड़ी लेके उसको हिला देते हैं कि भक्ति में आने के बाद भी उसको हिलाने की कोशिश करते हैं कि पावर सप्लाई भी बंद कर दिया है, लेकिन दूसरा तरीका है उसको हिलाने का, है ना। आप कभी देखे होंगे बंबई की लोकल ट्रेन में, हमने देखा है एक बार हम ट्रैवल कर रहे थे तो एक हमारे अमेरिका के डिवोटी पहली बार इंडिया में, तो लोकल ट्रेन में वहां पर वो गर्मी का मौसम था, वो पंखा बंद हो गया, तो इनको और गर्मी लग रही थी। तो फिर अभी इंडियन जुगाड़ क्या है, ऐसे पंखे को चालू करना, कंघी बाहर निकालो, हाँ कंघी से उसको हिलाया, घर घर चालू हो गया पंखा। तो ये अमेरिका से आया हुआ ये बंदा, ये आश्चर्यचकित हो गया कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी है। कि ऐसी टेक्नोलॉजी तो हमने अमेरिका में भी नहीं देखी, कंघी स्टार्ट फैन, ये कौन सी टेक्नोलॉजी। तो इसलिए यहां पर इंद्र ने जो मूसलाधार वर्षा करवाई, तो उससे ये समझ में आ रहा है कि कई बार हमारे जीवन में हमें समझ में नहीं आ रहा होगा, परंतु हमारे पिछले पाप पुण्य के वजह से, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने एक भजन में इस पद को गाया है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, निज कर्म दोषे भजनेर बाधा, कि मेरे निज कर्म पिछले कर्मों के वजह से अभी इस जन्म में मेरे भजन में बाधा आ रही है। तो कई बार जप करते समय नींद आना, जप करते समय आलस्य, विक्षेप, डिस्ट्रैक्शन, या जो भी, हम नीचे बैठकर जप नहीं कर सकते, घुटने दर्द करते हैं, और लेटने का मन करता है, सुबह उठा नहीं जाता, ये सारे जो साधना भक्ति के अंदर बाधाएं हैं, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, निज कर्म दोषे, मेरे ही कर्मों के वजह से ये मेरी अभी के वर्तमान स्थिति में ये सारी बाधाएं आ रही है। तो ये छठी शिक्षा। अब चित्रकूट के निकट आ गए भरत, वर्षा बंद करवा दी बृहस्पति इन्होंने, तो अब चित्रकूट के निकट आ गए और लक्ष्मण देख लेते हैं पेड़ पर चढ़कर, आवाजें, रथ की आवाज, हाथियों की आवाज, घुड़सवार उनकी आवाज, पूरी सेना, पूरी अयोध्या नगरी निकल पड़ी थी, प्रभु जी ने गाया इतना सुंदर भजन। तो लक्ष्मण पेड़ पर चढ़कर वो देखते हैं कि ये क्या है, और लक्ष्मण जो हैं तुरंत कंक्लूजन पर आ जाते हैं कि भरत, मैं जानता हूं क्यों आ रहा है वो, वो तसल्ली लेना चाहता है कि हम यहां पर भी सुखपूर्वक न रहें। देखो कई कई भी आ रही है, सब इनकी मिली भगत है, मैं बस आप यहां पर प्रतीक्षा करो, मैं खत्म करके आता हूं इन पूर्व सबको। रामचंद्र जी लक्ष्मण का ऐसा उनका तेवर देखते हैं, तैश में आ गए लक्ष्मण। रामचंद्र जी बोलते हैं, जेनिफर रिलैक्स, कि हाँ बोलते ना ओए ठंड रख, तो रामचंद्र जी पूछते हैं लक्ष्मण से कि एक बात बता, क्या भरत से दुश्मनी है, क्या बिगाड़ा है भरत ने तुम्हारा कि तुम भरत के ऊपर बिना सोचे समझे बिना जाने ऐसी लांछन लगा रहे हो। मेरे ख्याल से, प्रभु श्री राम कहते हैं लक्ष्मण से, मेरे ख्याल से तुम आवेश में आकर मेरे साथ निकल पड़े वन में, तुम्हें जम नहीं रहा है, तुम्हें ये वनवास जम नहीं रहा है, इसलिए तुम फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, तो तुम चले जाओ, भरत मेरे साथ रह लेगा। तो लक्ष्मण ने जब ऐसे शब्द सुने तो लक्ष्मण वो एकदम आश्चर्यचकित हो गए, हक्का बक्का हो गए कि अब मैं क्या बोलूं। तो यहां पर लेसन क्या है, नेवर जंप टू कंक्लूजन्स बिफोर कंसल्टिंग सीनियर्स। लक्ष्मण ने रामचंद्र जी से कंसल्ट नहीं किया कि आपका क्या मत है, ये क्या हो रहा है, ये पूरी अयोध्या नगरी सेना के साथ भरत सारे तीनों माताएं ये लोग क्यों आ रहे हैं यहां पर, बिना कंसल्ट किए कंक्लूजन्स पर आ गए। तो ये है सातवां लेसन, नेवर जंप टू कंक्लूजन्स विदाउट कंसल्टिंग योर सीनियर अथॉरिटी इन योर कृष्ण कॉन्शियसनेस और इवन इन योर फैमिली लाइफ। परिवार में भी क्या होता है, परिवार में देखा जाता है ना, इसलिए जो बुजुर्ग होते हैं परिवार के, वो बुजुर्गों को क्यों रखा जाता था, जॉइंट फैमिली का जो सिस्टम था, बुजुर्गों को क्यों रखा जाता था, कंसल्टेशन लाइब्रेरी, बुजुर्गों को लाइब्रेरी बोला जाता है। लाइब्रेरी कोई व्यक्ति विद्यार्थी कब जाता है, जब एग्जाम पास में आ रहा है और उसे समझ में नहीं आ रहा है तो लाइब्रेरी में जाके रेफर करने के लिए। तो घर के जो बड़े बुजुर्ग वो लाइब्रेरी का काम करते थे। एक बार एक घर में ऐसा हुआ कि जो बेटा और बहू, विधवा मां को ऐसे ट्रीट किया करते थे जैसे कि वो कोई बोझा है, वो कोई नौकरानी है। तो टिपिकल होता है ना कि बूढ़ी माँ है, उसकी देखभाल कोई नहीं कर रहा है घर पर, और ये आधुनिक दंपति अपनी युवावस्था में मौज मस्ती करने वाले, तो ये इन्होंने उपवास रखा था और शाम को इनको अपना उपवास तोड़ना था। तो क्योंकि ये बूढ़ी थी तो अपनी बहू से पूछी कि क्या कुछ बनाकर दे सकती हो, तो बहू ने कहा नहीं, हम तो निकल रहे हैं पार्टी के लिए। तो बेटे से जाके पूछा तो बेटे ने कहा, मां ऐसा क्यों नहीं करती, ये जो बगल में अपना मंदिर है, इस मंदिर में वो रोज भंडारा बांटते हैं, तो क्यों नहीं वहां जाके आप खा लेते। तो कुछ बोली नहीं, ठीक है, वो चली गई मंदिर में जाकर, वो जो भंडारा था भंडारा खाकर आ गई। अब हुआ क्या कि ये बेटा और ये बहू ये वृद्ध हुए, और जब इनका बेटा बड़ा हुआ तो इनके बेटे ने घर खरीदा और घर खरीदा मंदिर के बगल में। तो ये अब बाप बना हुआ पूछ रहा है कि तू ये मंदिर के बगल में घर क्यों ले रहा है, क्योंकि बहुत समय से वो ढूंढ रहा था और फाइनली उसको मंदिर के बगल में घर मिला। तो बोला मैं मंदिर के बगल में घर लूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने बचपन में यही देखा कि आपने जो हमारी दादी उनको मंदिर के भंडारे में भेजा करते थे, तो अभी आपकी भी वो स्थिति आ रही है तो मुझे मंदिर के बगल में घर लेना चाहिए ना। एक घर में एक पिता, वो अपने बाल काले कर रहे थे, डाई करते ना, तो बाल सफेद हो गए थे तो उसको काले कर रहे थे। तो उनका छोटा लड़का 5-6 साल का, वो देखा पिताजी शीशे में अपने बाल डाई कर रहे हैं, तो वो वाइट पेंट लेकर आया और वो अपने बाल वाइट कर रहा है। पिताजी ने देखा ये तो क्या कर रहा है, तो बेटे ने क्या बात बोली अपने पिताजी को ये जानने लायक। बेटे ने कहा पिताजी मैंने ये सुना है कि घर में किसी बुजुर्ग का होना जरूरी है। आप तो जवानी के पीछे भाग रहे हो काले करते हुए, तो मैंने सोचा कोई तो बुजुर्ग होना चाहिए घर पर, इसलिए कम से कम मैं अपने बाल सफेद कर लूं। तो हम इस मुद्दे पर नेवर जंप टू कंक्लूजन्स बिफोर कंसल्टिंग सीनियर्स। हमने आज सुबह सुनाया आपको, वो पूरा याद है आपको, 30 दिन कैसे बीता, जो डेडलाइन सीता माता ने दिया था प्रोजेक्ट, 30 डेज का प्रोजेक्ट, ऑपरेशन सीता, हाँ उनका 30 डे का कौन सा था, ऑपरेशन रेस्क्यूइंग सीता। तो उसमें जब रामचंद्र जी समुद्र के तट पर आते हैं और समुद्र के तट पर 3 दिन प्रतीक्षा करते हैं समुद्र देव रास्ता दें, तो प्रार्थना कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं, समुद्र देव आ नहीं रहे, तो रामचंद्र जी क्रोधित हो जाते हैं। ये एक घटना है जहां पर रामचंद्र जी का क्रोध, और ऐसा क्रोध कि समंदर का पानी उबलने लगता है, रामचंद्र जी की आंखें लाल भड़क हो जाती हैं और उस समय चिल्लाते हुए लक्ष्मण से कहते हैं मेरा धनुष बाण लाओ, इस समुद्र देव को मैं अभी ठीक करूं। तो देखिए रामायण में आप देखोगे हर समय ये बैलेंसर्स हैं, जिनको हम ये नाम एक बार हमारे संडे क्लास में भी हमने इसको सुनाया था, बैलेंसर्स। तो जब भी लक्ष्मण वो आवेश में आ जाते थे, क्रोध में आ जाते थे, तो रामचंद्र जी अपना कूल रखते थे उनको बैलेंस करने के लिए, जैसे कि अभी हो रहा है। भरत को देखकर लक्ष्मण वो तैश में आ गए, तो रामचंद्र जी उनको बैलेंस कर रहे। यहां पर रामचंद्र जी अभी क्रोध में आ गए, समुद्र ये रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है, मदद नहीं कर रहा है, इसकी इतनी हिम्मत, लाओ धनुष बाण। तो लक्ष्मण मुस्कुराते हुए थोड़ा रामचंद्र जी को शांत करने के लिए लक्ष्मण केवल धनुष लाकर देते। तो रामचंद्र जी देखते ही, क्या कर रहे हो तुम, अरे केवल धनुष से मैं क्या करूंगा, बाण लेकर आओ, तीर लेकर आओ। तो लक्ष्मण इतना छोटा सा तीर लाते हैं, वो पहुंचेगा भी नहीं। वो तो रामचंद्र जी लक्ष्मण की ओर देख रहे हैं कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम ये क्या कर रहे हो। अब जानने लायक बात है कि लक्ष्मण नहीं चाहते थे कि रामचंद्र जी समंदर के ऊपर प्रहार करें। क्यों, ये जानने लायक बात है। क्योंकि लक्ष्मण ने रामचंद्र जी से कहा कि आपकी जो पादुका आपने भरत को दी, भरत उस पादुका को रोज उनका अभिषेक सरयू में करता है और वो सरयू का पानी समंदर में आके मिल रहा है। अर्थात पूरी सरयू क्या हुई? आपके चरणामृत हुई। आपके पादुका का अभिषेक सरयू में भरत जी रोज कर रहे हैं तो पूरी सरयू नदी आपकी चरणामृत हुई, और ये चरणामृत इस समंदर में आके मिल रहा है तो पूरा समंदर आपका चरणामृत हुआ। तो आप मुझे बोल रहे हो कि आपके चरणामृत के ऊपर प्रहार आप करना चाहते हो और मैं आपको धनुष बाण ला कर दूं? कदापि नहीं। तो जब रामचंद्र जी ने यह सुना तो वो गदगद हो गए, और जब समुद्र देव ने यह सुना तो समुद्र देव वो प्रस्तुत अपने आप को किए, क्षमा याचना इत्यादि उन्होंने मांगी, और फिर वहां से जो सेतु बना, 5 दिन राम सेतु जो बना। तो यहां पर श्री वैष्णव आचार्य वो हमारे सामने एक और बहुत ही गहरा मुद्दा प्रस्तुत किए हैं कि रामचंद्र जी क्रोधित थे, इतना क्रोध में थे कि समंदर का पानी उबलने लगा उनके आक्रोश को देखकर। और तुरंत जब लक्ष्मण ने यह बात कही तो रामचंद्र जी क्रोध से प्रसन्नचित मुद्रा में परिणित हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? अक्सर आप देखते हो कि जब कोई क्रोध में होता है तो टाइम लगता है पारे को नीचे आने में, है ना? तो एक श्री वैष्णव आचार्य हैं, पराशर भट्ट। तो पराशर भट्ट उन्होंने इस प्रसंग के ऊपर रामचंद्र जी कैसे क्रोध अवस्था से एकदम प्रसन्नचित अवस्था में चले गए तो एक कहानी सुनाते हैं। लेकिन ये कहानी बहुत ही एक भौतिक प्रकार की कहानी आपको लगेगी, परंतु सुनाई किसने है? पराशर भट्ट ने। तो वो उनको जब ये प्रश्न पूछा गया, उनके एक शिष्य ने ये प्रश्न पूछा, तो उत्तर में उन्होंने ये कहानी सुनाई। एक बार एक जमींदार था, और जमींदार वो गंजा था। तो एक भिखारी आता है जमींदार के पास और भिखारी गुणगान करता है कि सरकार आप जैसी जुल्फे मैंने कहीं देखी नहीं, क्या आपके केश हैं ऐसे मखमली लहराते हुए जैसे कि कोई झरना लहरा रहा है, ऐसे गुणगान करने लगा। तो ये सोचा है कि ये मजाक उड़ा रहा है, मेरी खिल्ली उड़ा रहा है। लेकिन तो इसने जमींदार ने पूछा, तो क्या चाहिए तुम्हें? तुम अगर ये चमचागिरी मेरी कर रहे हो तो कुछ तो हेतु होगा, क्या चाहिए बोलो। तो इस भिखारी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, मैं केवल आपकी ये जो बाल हैं, केश हैं, आपकी जो जुल्फे हैं, बस उसका गुणगान करने के लिए मैं आया हूं, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे। तो ये इतना खुश हो जाता है, असलियत ये भी जानता है और भिखारी भी जानता है कि ये गंजा है, लेकिन ये इतना खुश हो जाता है कि पूरी एक बोरी चावल की, बासमती चावल की दे देता है, ले लो। ये खुश हो जाता है, भिखारी बोरी लेकर निकला, रास्ते में उसे एक व्यक्ति देखता है कि ये भिखारी, इसको तो मैं जानता हूं, इसको चावल की बोरी किसने दी? तो पूछा कि तुम्हें चावल की बोरी किसने दी? अरे वो अपने गंजे जमींदार ने दी। तो ये समझ जाता है, ये जाकर, क्योंकि ये जमींदार का रिश्तेदार होता है, तो ये जाकर कहता है कि आपने उसे खुश होकर आपने वो चावल की बोरी दी उसे, हाँ वो आपको गंजा बुला रहा था। गंजा बुलाया मुझे उसने? तो जमींदार भागते हुए, मुझे वो चावल की बोरी फिर चाहिए मेरे पास। तो अब ये भिखारी, ये क्योंकि पूरी बोरी उठाए तो ज्यादा तेजी से भाग नहीं पा रहा था, ये धीरे धीरे चल रहा था, तो जमींदार भागते हुए रुक वहां पर ऐसे चिल्ला गाली देते हुए, तो ये समझ गया कि जो मेरे को रास्ते में मिला था मैंने उसको कह दिया था कि वो गंजे जमींदार ने दिया, इसने जाके मेरी शिकायत लगाई होगी, तो 2+2 कर लेता है। तो वहां से जमींदार भागते हुए आ रहा है, यहां पर ये खड़ा हुआ है, अभी दोनों के बीच में दूरी है थोड़ी सी। तो ये भिखारी इस जमींदार से कहता है, इतनी तेजी से आप मत दौड़िए, आपकी जो जुल्फों, ये जो लट है आपकी जुल्फों की, वो बिखर रही है, हवा के वजह से ये लहरा रही है और वो बिखर रही है, तो आप उस आपका जो सेट बाल है वो खराब हो रहे हैं, आप इतनी तेजी से मत दौड़िए। जमींदार जब सुनता है फिर से पिघल जाता है और वो उसे बुलाता है, चलो वापस, तुम्हें एक और बोरी देता हूं। तो एक और बोरी चावल की उसको दे देते। तो पराशर भट्ट ये कहानी सुना रहे हैं और वो कहते हैं कि एक साधारण सा जमींदार अगर कोई झूठी प्रशंसा उसकी कर देता है तो उसका मूड देखो कैसे चेंज होता है पल पल में। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जब सही रूप में उनका कोई गुणगान करेगा तो क्यों नहीं वो प्रसन्न होंगे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। तो इसलिए ये जो प्रश्न उठा था कि रामचंद्र जी का अचानक उनकी क्रोध अवस्था से प्रसन्न अवस्था में वो कैसे परिणित हुए, तो जब भरत का गुणगान उन्होंने सुना और पादुका का गुणगान उन्होंने सुना तो रामचंद्र जी उस समय शर्मा गए और वो प्रसन्न हुए लक्ष्मण के भाव से। अब लक्ष्मण वहां पर रुक गए, रामचंद्र जी ने जब ऐसी बात कह दी कि भाई शायद मुझे ऐसा लगता है कि तुम यहां पर मुझसे परेशान हो, वनवास से परेशान हो, तो तुम लौट जाना, भरत रुक जाएगा मेरे साथ 14 वर्ष। तो लक्ष्मण जी सहम गए, कुछ नहीं बोले, शांत बगल में खड़े हैं एज अ स्पेक्टेटर, दर्शक, सारे धनुष बाण रख दिए उन्होंने। अब भरत आते हैं, रामचंद्र जी अपनी कुटिया में हैं, अपनी कुटिया में चले जाते हैं क्योंकि उनको आने में अभी समय है। ये तो लक्ष्मण ने तो दूर से देख लिया था ना पेड़ पर चढ़कर। तो राम अपनी कुटिया में चले जाते हैं, भरत आते हैं और भरत रामचंद्र जी की कुटिया के सामने बैठकर राम का नाम लेना प्रारंभ करते हैं अपने मन में। ऐसे नहीं कि पहुंचते ही लक्ष्मण से पूछा कहाँ है, कहाँ है, बताओ कहाँ है, मैं आया हूं, तुरंत समाचार दो, नहीं, बैठे हैं। काफी समय तक वो बैठे रहे और भगवान पर ध्यान कर रहे थे और फिर कुछ समय पश्चात रामचंद्र जी कुटिया से बाहर आते हैं, भरत को आलिंगन करते हैं। तो यहां पर क्या सीखने मिल रहा है, एज अ साधक हमें हमारा रोल अदा करना है, हमारी साधना हमारी तरफ से पक्की करनी है। सामने से रामचंद्र जी कुटिया से कब बाहर आएंगे ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आएंगे कि नहीं आएंगे ये भी हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी भरत हमें सिखा रहे हैं, प्ले योर पार्ट एंड बी पेशेंट, धैर्य रखो। इसलिए हमें उदाहरण देते हैं ना कि हमारे मंदिर का जो आल्टर के दरवाजे हैं वो अंदर से खुलते हैं, है ना, बाहर से कितना भी आप खोलने की कोशिश करो बाहर से वो दरवाजा नहीं खुलेगा। इसका मतलब क्या है कि हम बाहर खड़े होकर भगवान का नाम लें, प्रार्थना करें, याचना करें और जब भगवान तैयार हो जाएंगे अपना दर्शन देने के लिए तब ऑल्टर का द्वार अंदर से खुलेगा। और कौन खोलता है, हमारे गोपालानंद प्रभु, हेड पुजारी हो। तो जब उनकी अनुमति होगी तभी राधा मदन गोपाल जी का दर्शन होगा, नहीं तो बैठे रहो काटे गली में। दिन काटते रहो काटे गली में। तो एक बहुत ही सुंदर कथा है, ये सच्ची घटना है। इस सच्ची घटना के पश्चात हम हमारे आज के सत्र को विराम देंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 9 बज चुके हैं। बाकी के जो हम लोग 8वें पर हैं ना, जो 2 बचे हैं, क्योंकि कल 8 तारीख है, तो हमारे सुबह का एक सेशन होने वाला है, कंक्लूडिंग सेशन होने वाला है। तो कंक्लूडिंग सेशन में कंक्लूडिंग लास्ट टू लेसन्स। तो ये जो अभी मैं आपको एक कथा सुनाने वाला हूं, ये बहुत ही वृंदावन की एक प्रसिद्ध कथा है, जिसके अंदर वृंदावन, भगवान श्री कृष्ण का अवतार और राम अवतार, इन दोनों का संबंध इसमें है। सुनना चाहेंगे? तो वृंदावन में एक महात्मा हुए, अभी तो वो नहीं है, बहुत समय पहले की बात है, एक महात्मा हुए, उनका नाम कोई नहीं जानता था। उन्हें वृंदावन में सब लोग जज बाबा बुलाते थे। क्या बुलाते थे? जज बाबा, कि ये जज बाबा है, ये जज बाबा। तो एक बार पूछा गया कि इनको ये जज बाबा क्यों बुलाते हैं, तो फिर वहां के एक महंत ने बताया कि ये वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के भक्त बनने से पहले ये जज थे, और ये दक्षिण भारत में किसी छोटे से प्रांत में किसी लोक अदालत के जज थे, और जब ये जज थे तो उनके उस टेन्योर में एक घटना हुई जिसके वजह से ये बाबा जी बन गए, भगवान के अनन्य भक्त बन गए। तो घटना क्या थी कि उनके उस प्रांत में, उस गांव में एक केवट रहा करता था जो प्रभु श्री राम का भक्त था, और उस पूरे गांव में जहां पर वो केवट रहता था तो एक ही मंदिर था, और वो मंदिर था रघुनाथ जी का। राम का एक और नाम है रघुनाथ, तो रघुनाथ जी का वो मंदिर था, और ये जो केवट वो रघुनाथ जी का अनन्य भक्त, और इसका नाम, क्योंकि कई लोग केवट बुलाते थे क्योंकि रघुनाथ जी का भक्त था और इतना भोला था ये, और राम का भक्त था, तो इसको सब लोग उस गांव में भोला राम बुलाते थे। और ये इतना भोला था, जब भी इससे कोई कुछ पूछता कि बताओ भोले इसके बारे में तुम्हारा क्या मत है, तो ये कहता मैं क्या जानू रघुनाथ जाने। ये हर रोज एक ही इसकी लाइन, जो भी इससे कुछ कोई समस्या लेकर आता या पूछता कि भाई तुम ठीक हो, तुम्हारा जीवन कैसे चल रहा है, मैं क्या जानू रघुनाथ जाने। तो ये केवट, ये भोला राम, इसकी एक बेटी जो कि अब शादी की उम्र तक आ गई, वो तो इसकी शादी करानी थी, तो इसके और 2 बेटे थे, उन्होंने थोड़ी सी धनराशि इकट्ठा करी, फिर भी पूरा धनराशि हो नहीं पा रही थी, तो इन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ के जो सेठ साहूकार हैं, इनको आप अच्छी से जानते हो, तो आप इनसे थोड़ा धनराशि आप मांग लो, ब्याज पर हम लौटा देंगे, फिर बाद में शादी कर दे अपनी बहन की, उसके बाद में ब्याज से लौटा देंगे। तो ये गए और उन सेठ जी से इन्होंने कुछ रकम उधार में ली, और पूरा पूरा कैसा कैसा ब्याज देना है, कितने समय में, वो सब कुछ वो सेठ जी ने बता दिया, उधार में पैसे दे दिए। इनकी बेटी की शादी हुई, शादी के कुछ दिन पश्चात, कुछ महीने पश्चात, वो बेटों ने मेहनत की, केवट ने भी मेहनत की, सारी धनराशि इकट्ठा की, ब्याज के साथ सेठ जी के पास गए। ये भोला राम जाता है, सेठ जी को पाई पाई चुका देता है ब्याज सहित। सेठ जी देखते हैं, हाँ पूरी पाई पाई चुका दी। रसीद में सेठ जी ने लिख दिया कि इसने मेरी एक एक पाई ब्याज सहित चुकाई है, और फिर भोले को दिया और बोला पढ़ो इसे। तो वो क्या कहता है, मैं क्या जानूं, रघुनाथ जाने, मैं तो अनपढ़ गवार हूं, मुझे नहीं आता पढ़ना लिखना। सेठ जी ने जब ये सुना तो सेठ जी के मन में लालच आ गया कि इसे फंसाया जा सकता है। तो सेठ जी ने कहा ठीक है, तू पर्ची यहां दे, एक गिलास पानी लेकर आ मेरे लिए। सेठ जी ने वो पर्ची तो पीछे छिपा दी, फाड़ते तो पता चल जाता, तो फाड़ी नहीं उस पर्ची को पीछे छिपा दी अलमारी में, और फिर ऐसे ही पन्ने पर कुछ तो लिख दिया। जब केवट पानी लेकर आया तो केवट को दे दिया, ये ले तेरी रसीद है जा। तो वो खाली पन्ना लेकर वो आ गया, उसने देखा भी नहीं इसमें कुछ लिखा था कि नहीं लिखा था, ये बदल दी, कुछ नहीं देखा। वो आकर उसने अपनी बेटी की शादी कर दी, बेटे बड़े हो गए थे, वो घर से निकलकर अब मंदिर में ही रघुनाथ जी की सेवा किया करता था, नाम लिया करता था, अपनी साधना सब कुछ वहीं पे किया करता था। अब इस सेठ जी ने मुकदमा दायर कर दिया इसके ऊपर कि इसने मेरे से इतने पैसे लिए थे और इसने एक भी पैसा लौटाया नहीं है, मुकदमा इसके ऊपर कर दिया। तो अब उस लोक अदालत में ये केस गया, तो लोक अदालत में जब केस गया, जब इसको कटघरे में खड़ा किया गया, और ये जज जो आगे चलकर भक्त बने, ये जज थे, तो इन्होंने पूछा, तो भोले बताओ ये सेठ जी तुम्हारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मुकदमा इन्होंने दायर किया है। तो ये तो एक ही लाइन कहे, मैं क्या जानू रघुनाथ जाने, मैंने तो सारे पैसे इनको लौटा दिए थे, और इन्होंने रसीद भी दी। तो जज के सामने उन्होंने जो पन्ना दिया था सेठ जी ने वो दिखाया, तो जज देखते हैं ये क्या रसीद है, ये तो खाली पन्ना है, इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ये थोड़ी कोई गवाही है, कोई सबूत हो सकता है, मैं क्या जानू रघुनाथ जाने। तो फिर जज को लगा कि ये व्यक्ति थोड़ा बहुत ही सरल और सही में भोला लगता है, और ये सेठ जी कुछ गड़बड़ लगता है मुझे। तो जज थोड़ा सा वो पहचान गए। तो फिर जज ने केवट से पूछा, भोले से पूछा, एक बात बता कि तूने जब पैसे दिए सेठ जी को तो कोई और था क्या, कोई वहां पर था? तो केवट ने कहा हां रघुनाथ जी थे। तो कहां रहते हैं रघुनाथ जी? हमारे गांव में रहते हैं। तो जज ने सम्मन पास किया, रघुनाथ जी को पेश किया जाए। जज को लगा कोई मित्र इत्यादि होगा, कोई इसका सगे संबंधी कोई रघुनाथ होगा जिसका नाम रघुनाथ है। तो जज ने सम्मन पास करा दिया कि बुलाया जाए, नेक्स्ट जो हियरिंग होगी कोर्ट की, अदालत की, उसके अंदर ये जो भी रघुनाथ है उसको बुलाया जाए। तभी कोर्ट का सम्मन गया, तो उस गांव में वो पूछ रहा है कि भाई रघुनाथ कौन है, रघुनाथ कौन है यहां पर? तो कोई बोले रघुनाथ, रघुनाथ तो एक ही है वो मंदिर में, एक ही है इस पूरे गांव में रघुनाथ, वो मंदिर में है। तो ये गया तो रघुनाथ जी के पुजारी को सामने मिला, पूछा यहां पर रघुनाथ रहते हैं? बोला हाँ रघुनाथ ही तो रहते हैं यहां पर। बोले उनके नाम सम्मन जाहिर किया गया और उनको कोर्ट में प्रस्तुत होना है गवाह के रूप में। तो ये पुजारी जो जानता था, भोले को अच्छी से जानता था कि ये सब, तो भोले को बुलाया कि तू क्या करवा रहा है? वो जान गए कि यही ये लाइन बोलता है हर समय, मैं क्या जानू रघुनाथ जाने। तो इसी ने किया होगा। तो बोले ये क्या रघुनाथ जी के नाम पर सम्मन पास हुआ है? लेकिन ये पुजारी इतना प्रसन्न हुआ, रघुनाथ जी के पास जाता है, भगवान के पास जाता है और कहता है कि इतने अलग अलग प्रकार के चढ़ावे आपके ऊपर लोगों ने चढ़ाए, लेकिन आज दिन तक कभी कोर्ट से अदालत से सम्मन आपके पास नहीं आया, ये पहली दफा आया है। और ये हमारे भोले के वजह से आया है। हम सब जानते हैं कि कितना निष्पाप है, हम सब जानते हैं कि इतना शुद्ध है, तो कृपा करके पुजारी रघुनाथ जी के विग्रह को देखते हुए बोल रहा है कि कृपा करके इसकी लाज आप बचाइए, इसका कोई नहीं है, इसने अपना सारा घर बार छोड़ दिया है, इसका कोई नहीं है, इसको फंसाया जा रहा है, आप कृपया इसकी लाज बचाइए, जो भी तरीके से आप करें, ये सम्मन है, आप देखिए, ये भोला देखिए आप। तो जब वो तारीख आई तब कटघरे में केवट खड़ा हुआ, तो जज पूछते हैं कि भाई तुम्हारा गवाह कहाँ है, जो तुम कह रहे थे रघुनाथ वो कहाँ है? तो केवट कहे कि भाई वो तो सब जगह होते हैं, यहीं यहीं होंगे। तो जज, सब जगह होते हैं यहीं कहीं, तो कहाँ है? तो फिर जो वहां पर वो सिक्योरिटी द्वारपाल था, उसको कहा गया है कि आवाज लगाओ, तो उसने आवाज लगाई, रघुनाथ हाजिर है, रघुनाथ हाजिर है। और जज प्रतीक्षा में, सब प्रतीक्षा में वहां पर, केवट यहां पर भगवान का, रघुनाथ जी का नाम ले रहा है, और उस अदालत के दरवाजे से एक बूढ़े व्यक्ति जिनके बाल पूरे सफेद हुए, हाथ में लाठी लिए लड़खड़ाते हुए उस अदालत में प्रवेश करते हैं, और वो कहते हैं मैं हूं रघुनाथ। और जज जब रघुनाथ इस रूप में इनको देखते हैं तो विश्वास नहीं होता है कि ये कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको आज दिन तक इस प्रकार का तेज ऐसे बूढ़े व्यक्ति के अंदर मैंने देखा नहीं। तो जज पूछते हैं तो तुम गवाह हो? ये भोला केवट बोल रहा है कि जब इसने, सेठ जी देख रहे हैं कि ये कौन है, वो सेठ जी परेशान। तो जज पूछते हैं कि ये केवट बोलता है कि जब इस केवट ने पैसे दिए सेठ जी को तो तुम वहां पर मौजूद थे? रघुनाथ जी कहते हैं हां, मैं ही अकेला वहां पर मौजूद था, तो रसीद कहां है? तो रघुनाथ जी कहते हैं इस सेठ जी को यहीं पर रखो और इसके घर पर जाओ, जो पहला वाला कमरा है उसमें तीन अलमारियां हैं, उस तीन अलमारियों में जो बीच वाली अलमारी है, उस बीच वाली अलमारी में वो रसीद रखी हुई है इस सेठ ने, लेकर आओ। तो वहां पर भेजा जाता है, और ये सच्ची घटना है बाय द वे, भेजा जाता है और रसीद वहां पर रखी होती है, रसीद लेकर आते हैं, सेठ जी को अंदर बंदी बनाया जाता है और भोले केवट को रिहा किया जाता है। तो जज, ये जज वो रघुनाथ के चेहरे को भूल नहीं पा रहे थे, और वो फिर पूछे, जो समन लेकर गया था उसे पूछे कि क्या तुमने ये समन इसी व्यक्ति के हाथ में दिया था? तो उसने कहा नहीं, मैंने तो किसी और को दिया था और सिग्नेचर किसी और का था। और वो कहा कि वो रघुनाथ जी का सेवक है और वो रघुनाथ जी तक पहुंचा देगा ये सम्मन। तो जज गांव में गए, गांव में गए वो अपने उस सेवक के साथ, और कौन था जिसने साइन किया था? तो पुजारी के पास। तो पुजारी से पूछा कि ये रघुनाथ कौन है? तो पुजारी समझ गया जज आए हैं, क्यों आए हैं? रघुनाथ जी से मिलने, केवट उसकी शुद्धता, उसकी शुद्ध भक्ति है उसकी वजह से। तो जज को रघुनाथ जी के अर्च्य विग्रह के सामने लाकर खड़ा कर देता है। तो जब जज देखते हैं कि ये प्रभु श्री राम आए थे, और उस समय जब दर्शन कर रहा होता है वो जज, तो जो रघुनाथ जी के अर्च्य विग्रह का जो चेहरा है उसी बूढ़े व्यक्ति में परिणित हो जाता है, और जज को जो दर्शन अदालत में मिलता है वही दर्शन रघुनाथ जी इन जज को देते हैं, और उसके पश्चात वो अपनी नौकरी छोड़ते हैं, वो जज का पद छोड़ते हैं, और दिन भर रोते रहते थे और वो वृंदावन चले गए। और वहां पर जब उनको रोते हुए सभी लोग देखे, जब उनको पूरी ये घटना समझ में आई, तो वो कहे कि आप रो क्यों रहे, क्योंकि आपको तो साक्षात रघुनाथ जी ने दर्शन दिया, तो आपको तो खुशी मनानी चाहिए। तब इन्होंने कहा, नहीं, मुझसे बड़ा अपराधी और कोई नहीं है, मुझसे बड़ा अपराधी कोई नहीं है कि मेरे सामने साक्षात रघुनाथ जी आए और मैं कुर्सी पर बैठा रहा और वो खड़े थे, जिनकी अदालत में सभी जीवों को खड़ा होना पड़ता है, उनकी अदालत के सामने मैं बैठा था और रघुनाथ जी खड़े थे, इतना बड़ा अपराध मैंने किया। इसलिए जब वो वृंदावन गए, जितने वर्ष वो जिए वो बैठे नहीं। ये तपस्या उन्होंने वृंदावन में की कि मैंने ये अपराध किया रघुनाथ जी के सामने कि वो खड़े रहे और मैं बैठा रहा, तो इस अपराध का पश्चाताप है कि मैं मेरे जीवन काल के अंत तक मैं बैठूंगा नहीं। और वो रामचंद्र जी की भक्ति, रामचंद्र जी का भजन खड़े खड़े किया करते थे। जिस किसी भी मंदिर में जाते थे तो मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करते थे, तो जब उनको पुजारी मंदिर के अंदर बुलाते थे तो मंदिर के बाहर से ही धूली लेकर अपने माथे पर लगाते थे, पुजारी से कहते थे कि मुझसे बड़ा अपराधी कोई नहीं, मैं अपनी शक्ल भगवान को नहीं दिखा सकता, मैं दिखाने लायक नहीं हूं, लानत है मुझ पर। और वो वृंदावन में प्रसिद्ध हुए रघुनाथ जी के अनन्य भक्त जज बाबा के रूप में। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो इससे ये सीखने मिलता है कि वो केवट, वो भोला राम, वो भोला केवट, वो अपने जीवन में केवल एक ही चीज जानता था, रघुनाथ जाने मैं कुछ नहीं जानूं। और इस भाव से वो दिन रात प्रभु श्री राम की भक्ति, प्रभु श्री राम का नाम लिया करता था। और क्योंकि उसका ऐसा शुद्ध अनन्य भाव था, इसलिए साक्षात रघुनाथ जी उसकी पैरवी करने के लिए गवाह बनकर आए और उसे रिहा किए। तो हम सब यदि उस केवट के समान फिर से मासूम हो जाएं, फिर से भोले हो जाएं, और हमारे जीवन में हम भी अगर ये सिद्धांत रखें कि रघुनाथ जी वो सब कुछ जानते हैं, हमारा सारा कच्चा चिट्ठा वो जानते हैं, और हमारे जीवन की बागडोर यदि हम रघुनाथ जी के हाथ में दे दें, तो हां जब अदालत में हमें पेश किया जाएगा एक मुजरिम के रूप में, तो अवश्य ही रघुनाथ जी आएंगे हमें छुड़ाने के लिए। बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। चित्रकूट धाम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी।
श्रीमान शिक्षाष्टकम प्रभु की जय। आज के जो हमारे प्रसाद के कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं वो नासिक से नीता चोपड़ा माता जी इन्होंने किए हैं, उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करना चाहेंगे। जो भी भक्ति में बाधा उनके जीवन में है वो निकल जाए। और सीमा सक्सेना माता जी, इन्होंने अपनी माता के स्मृति में उन्होंने भी स्पॉन्सर किया है, और एक भक्त है जिन्होंने अपने माता के स्मृति में किया, तो तीन भक्तों ने आज का प्रसाद स्पॉन्सर किया है। तो इन तीनों परिवारों को हम धन्यवाद देंगे, सीताराम और मंदाकिनी मैया से प्रार्थना करेंगे कि उनके आशीर्वाद